शांति। उड़ते रहो, उड़ाते रहो। इसका बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि चलने से तो ट्रैफिक फंसा देती है ना? और इसीलिए बहुत सुंदर विषय है, उड़ते चलो, उड़ाते चलो। लेकिन उड़ने के लिए फिर रिफाइंड पेट्रोल भी चाहिए होता है। तो ये सब बातें बताने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगिनी राजयोगी भ्राता मोहन सिंगल जी। एक हाथ हिलाकर भ्राता जी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आप यूपी की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। 1962 में आपको यह ईश्वरीय ज्ञान मिला, अर्थात साकार मम्मा बाबा की पालना का आपको बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ और तब से ही आप सेवाओं में भी लग गए। फिर तो 1967 में आपने मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की और फिर ONGC ज्वाइन किया और लगातार 28 वर्षों तक ONGC में आप कार्यरत रहे अलग अलग कैपेसिटी में। 1996 में जब आप ONGC में सुपरिंटेंडिंग जियो फिजिसिस्ट के रूप में सेवारत थे, तभी आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया और हमारे ज्ञान सरोवर के अकेडमी कोऑर्डिनेटर का पदभार संभाला और तब से लेकर आप हेडक्वार्टर में रहकर अपनी सेवाएं देते हैं। 1985 में आपने 12 युवा पदयात्राओं का संचालन किया, युवा विभाग के प्रभाग के आप सेक्रेटरी रहे और उसके बाद 1988 में साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग के आप नेशनल कोऑर्डिनेटर बने। वर्तमान में आप उसके चेयरपर्सन हैं और बहुत सुंदर सेवाएं चल रही हैं इस प्रभाग द्वारा। आपने आसाम, बिहार, गुजरात आदि आदि स्थानों पर सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने हैं। कई सारी प्रदर्शनियों का आपने निर्माण किया है और कई पुस्तकें आपने लिखी हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आपको पर्यावरण श्री का अवार्ड भी मिला है और इंटरनेशनल लेवल पर भी आपने कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं। तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी आज हमारे बीच में उड़ते चलो, उड़ाते चलो इस विषय पर अपने अनुभव के आधार से प्रकाश डालेंगे। आदरणीय राधा जी।
ओम शांति। सब उड़ करके आ गए। किस में उड़े? संकल्प विकल्पों में उड़े या ड्रामा के पट्टे पर उड़े? किस में उड़े? संकल्प भी आए होंगे कि देखो ट्रैफिक जाम हुआ, नहीं आए, क्लास लेट हो गई, ऐसा तो नहीं? बाबा बीच बीच में ये सब जो रिहर्सल कराता है, इसके पीछे बहुत बहुत बड़ा गुह्य रहस्य है। क्योंकि बहुत ऐसी परिस्थितियां आनी है, ये तो कुछ नहीं है। बहुत कोविड के लिए भी बाबा ने कई बार संदेश में बोला कि अभी तो सिंपली एक बहुत छोटा सा कोविड का रिहर्सल देखा है और ऐसी परिस्थितियां आनी है उसके लिए बाबा ये रिहर्सल कराता है। बीच बीच में टेस्ट पेपर लेता है, तैयारियां बच्चे करते रहें और फुल स्टॉप लगाने का उन्हें अभ्यास हो। कोई भी परिस्थिति आए, अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। बाबा ने जो कहा है ना, हर चीज में बहुत बहुत कल्याण है। क्योंकि टेस्ट पेपर नहीं आएगा अगर बीच में, तो फाइनल पेपर में एकदम कैसे पास विद ऑनर्स होंगे। इसीलिए उड़ने उड़ाने का ये देखना है, क्योंकि मन भी, मन के लिए भी कहते हैं मन उड़ जाता है, चला जाता है, पता नहीं चलता। मन को भी बहुत दूर दूर एक सेकंड में ही कहाँ का कहाँ उड़ करके चला जाता है, कहाँ से कहाँ आ जाता है। इसीलिए ये अपने ऊपर स्वनियंत्रण रहना चाहिए कि हम देखते रहें साक्षी होकर के, कितना मन उड़ रहा है, बुद्धि उड़ रही है, और कितने हम साक्षी होकर के उस दृश्य को देख रहे हैं। तो जब उड़ने उड़ाने की बात आती है ना, तो मनुष्य को भी कई सौ वर्ष पहले सबने सुना भी होगा, प्लेन क्या है? कोई बंधुओं ने देखा, अरे ये चिड़िया उड़ रही है, पंछी उड़ रहे हैं, सब उड़ सकते हैं, तो क्या मनुष्य नहीं उड़ सकता? सबने इतिहास पढ़ा होगा बचपन में। तो सबसे पहले कोई भी रचना होती है संकल्प में, संकल्प में आया नहीं उड़ सकते हैं, और उसमें उन्होंने अभ्यास शुरू कर दिया और उड़ने के लिए यंत्र बनाए। कुछ बार फेल भी हुए, पास होते होते अब इतने एडवांस यंत्र उड़ने के बन गए हैं कि कुछ मिनटों में ही कहीं का कहीं पहुंचा जा सकता है। तो इसीलिए कोई भी चीज के लिए, उड़ने उड़ाने के लिए भी सबसे पहले संकल्प में उड़ने की बात हो। अब यहां जो उड़ने उड़ाने की बात है, हाँ, क्या उड़ने उड़ाने की बात है? इस शरीर को नहीं, बल्कि आत्मा, उसके अंदर भी सूक्ष्म मन बुद्धि जो हमारी वृत्ति है, बस उससे हम कहीं से कहीं भी पहुंच जाए। तो वो जब उड़ने की बात आती है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले संकल्प में उड़ना है। कोई भी चीज है उसकी परिकल्पना व्यक्ति जब करता है, कल्पना लोक में जब उड़ता है, तब वास्तविक रीति से भी उड़ सकता है। इसीलिए पहले हमें अपनी कल्पना के अंदर ही उड़ना है और संकल्पों को बहुत ऊंचा एकदम उठाना है, सिद्धि स्वरूप बनना है संकल्प। और जब ये ऐसा बात आती है तो क्या करते हैं संकल्प में? बाबा ने भी ना, जब सबसे पहले आके संकल्पों में ही परिवर्तन किया। हम सब जानते हैं अपना अज्ञान काल, हर एक का अपना अज्ञान काल भी रहा और फिर ज्ञान में कैसे आए वो भी रहा। तो सबसे पहले बाबा ने किस चीज का परिवर्तन किया? स्मृति का परिवर्तन किया। स्मृति के परिवर्तन से ही बाकी सब परिवर्तन होते हैं। तो इसीलिए पहले स्मृति का परिवर्तन क्या किया? आप शरीर नहीं आत्मा हो। तो जैसे ही ये स्मृति का परिवर्तन हुआ और हमारा उड़ना शुरू हुआ। ब्रह्मा बाबा का भी ये हुआ। ब्रह्मा बाबा तो हमारा जो ट्रेन है इसका इंजन है ना, लीडर। तो ब्रह्मा को भी सबसे पहले पहले उसके स्मृति में क्या परिवर्तन हुआ? बाबा को जब साक्षात्कार वगैरह भी हुए, विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, बाबा ने देखा, बहुत प्रसन्न हो गया, क्योंकि विष्णु उनके आराध्य देवता थे। विष्णु का चित्र भी बाबा की ड्रॉर में हमेशा रहता था, पॉकेट में रहता था। और जब वो देखा तो एक तरफ तो खुशी हुई, प्रसन्नता हुई, और दूसरी तरफ चिंता भी हुई। कौन सी चिंता? जब बाबा के कानों में आवाज पड़ी, कौन सी आवाज? अहम चतुर्भुज तत्व, मैं चतुर्भुज हूं, तुम भी मेरा ही स्वरूप हो, तुम वो ही हो जो मैं हूं वो तुम हो। बाबा को तो समझ ही नहीं आया, स्मृति में भी नहीं आया, सिर्फ कानों में ही आवाज पड़ी। और भी धीरे धीरे स्पष्ट हुआ जब बाबा को साक्षात्कार हुए परिवर्तन के, जब एटॉमिक वीपन के द्वारा परिवर्तन युद्ध हो रहा है बहुत बड़ा, उसका अनुभव हुआ, जब ग्रह युद्ध का अनुभव हुआ, कितने लाखों लोग खून खराबा हो रहा है, खूनी नाहक खेल, जब नेचुरल कैलेमिटीज का जो भूकंप है, जो पांच तत्व है जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, उनकी अति हलचल का अनुभव हुआ, वो विनाश के निमित्त बन रहे हैं, तो बस बाबा तो एकदम जैसे बाबा की आंखें भी नम हो गई। अहो प्रभु, बस पिता प्रसिद्ध अर्जुन की तरह ही बाबा को हुआ, बस प्रभु बस कीजिए, बस अब मुझे अपना मोहनी रूप दिखाइए भगवान, मोहनी रूप दिखाइए। और उसके बाद फिर बाबा को क्या साक्षात्कार हुआ? ऊपर जैसे स्टार हैं, बहुत स्टार हैं, वो स्टार नीचे आते हैं, कोई राजकुमार बन जाते हैं, कोई राजकुमारी बन जाते हैं। तो इस प्रकार से जब बाबा ने परिवर्तन देखा तो देखते रहे, बहुत अच्छा लगा, कोई राजकुमार बन रहा है, राजकुमारी, बहुत खुश हो गए, बाबा नई दुनिया है, प्रकृति सतो प्रधान है, सब चीज बहुत आयत में है, रंगीला मौसम है, बहुत हर चीज खुशबूदार। लेकिन तभी बाबा के कानों में आवाज आई, तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है, तुम्हें ऐसी सृष्टि बनानी है जहां सब राजकुमार राजकुमारी रास कर रहे हैं, खेल कूद, नई दुनिया है, हर प्रकार की सुख सुविधाएं। और तब से बाबा की स्मृति का परिवर्तन शुरू हो गया। मैं कैसे बनाऊंगा, कौन था, किसकी आवाज थी ये दुनिया, मैं तो नहीं बना सकता, मैं कैसे बनाऊंगा। लेकिन धीरे 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 सब पाठ स्पष्ट होता गया। तो इसी तरीके से हम बच्चों की भी स्मृति का परिवर्तन बाबा ने किया, और बच्चे बस ऐसी दुनिया में चलना है। अब उसके लिए ये शरीर, पांच तत्वों का शरीर छोड़ के या तो उड़ के सूक्ष्म वतन आओ, परम धाम जाओ, या नई दुनिया में जाओ, या उस दुनिया को यहाँ पर लो। पर्पज यह है कि देह भान का, देह अभिमान का त्याग, और उससे उड़ करके जाए। तो तब से हमारा ये परिवर्तन शुरू हुआ। और जब बाबा ने ये बताया कि कैसे ये परिवर्तन आप बच्चों को करना है, और उसके अभ्यास में हम सब लोग लग गए, अभी भी लगे हुए हैं, आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इस ये कैसे हमारा और बढ़ता रहे कि अंत समय में ये जो है हमारा अशरीरीपन, विदेही अवस्था, फरिश्ता स्वरूप, ये जो है हमारा, ये क्या बने? हमारा अंतिम वाहन बन जाए। बस ये वाहन की बात तो हम सुनते हैं, प्रेजेंटली प्लेन में उड़ते हैं, जाते हैं, और वो भी बाबा ने बताया सतयुग में पुष्पक विमान होते हैं और कैसे उनमें जाएंगे। लेकिन उनसे पहले यहाँ पर अपने इस अशरीरी वाहन में उड़ने का हमें अभ्यास, ये हम बाबा को देखते थे। कैसे अभ्यास होता था, ब्रह्मा बाबा के साथ रहने का कई बार मौका मिला, देखते थे बाबा को, बस बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा पूछते थे हाँ बच्चे कैसे हो, क्या हाल चाल है, ऐसे हाथ बढ़ाते थे और हम सब चुंबक की तरह खिंच के बाबा की बाह में एकदम आ जाते थे। और इतना ही नहीं, ये तो स्थूल रीति से आए, लेकिन जैसे ही बाबा की बाह में आए मानसिक रीति से उड़ जाते थे, बिल्कुल आत्मिक रीति से अशरीरी हो जाते थे। वो बाबा ने उड़ने का अभ्यास पहले दिन से ही हम बच्चों को कराया। क्यों करा सके बाबा उड़ने का अभ्यास? क्योंकि खुद बाबा ने इसका बहुत अभ्यास किया था। आप सबने सुना ही है ना कैसे बाबा ने लिख लिख के पक्का किया, मैं आत्मा हूं, जसोदा आत्मा है, निर्मला आत्मा है, नारायण आत्मा है। ये अभ्यास करके और अभ्यास करते 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 ऑटोमेटिकली जब आत्मिक आत्मा में कॉन्शियस माइंड से वो सब कॉन्शियस माइंड में घुस जाता है, अर्धचेतन अवस्था में घुस जाता है ना, अपने आप ही सपने में भी सोते सोते बोलते मैं आत्मा हूं मैं आत्मा। वो स्मृति जब रहती है तो फिर क्या होता है, बस उस स्थिति में हम स्वयं तो होते हैं, लेकिन स्वयं जितना होंगे दूसरे के भी नैनों में देखेंगे, भ्रकुटी में देखेंगे, उसको भी उड़ा देंगे वो शरीर। वो हम लोग अनुभव किया कितनी बार, बस बाबा की बाह में आए बाबा एकदम उड़ा देते थे और हम लोग अशरीरी हो जाते थे। उसके बाद कुछ सेकंड कुछ मिनट बीतते थे, आ बच्चे आओ, ऐसे बाबा प्यार से ना, बहा बच्चे आओ आओ आओ, फिर धीरे 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 जैसे आँख खोलते थे बस बाबा टोली खिलाते थे, हाल चाल पूछते थे, नाम पूछते थे, कुछ परिचय पूछते थे, कुछ हम वहाँ बच्चे कुछ पूछना है, कुछ पूछना होता था तो पूछते थे, एक जाता था दूसरा आता था, दूसरे को भी ऐसे ही अनुभव होता था, तीसरा पूरी पार्टी को एक एक को ही अनुभव, उससे पहले नाम भी नहीं सुना था, अशरीरी अवस्था, विदेही अवस्था, फरिश्ता स्वरूप, कुछ नहीं, बस ऐसा अनुभव होता था जैसे जब सो जाते हैं ना नींद में एकदम अशरीरी हो जाते हैं कुछ पता, ऐसे ही बिल्कुल अशरीरी अवस्था का अनुभव होता था। और फिर बाबा बच्चों से अपना थोड़ा रू रू हन करके फिर बच्चे अलग हो जाते थे। तो ये उड़ने की पहली कि दूसरे के सहयोग से उड़ना, बाबा की शक्ति से उड़ना, हमने शक्ति नहीं थी किसी में भी नहीं, लेकिन बाबा का सहयोग। और जब बाबा से अलग हो जाते थे उसके बाद हम लोग जितना भी योग कर लें, जितना अभ्यास करें, बाबा के कमरे में जाएं, उस अवस्था को लाना बहुत मुश्किल होता था। वो बाबा की शक्ति की अवस्था थी, बाबा के सहयोग से जैसे कि उड़ जाते थे। तो जब ये उड़ना पहले इसके लिए यही कंडीशन है कि सबसे पहले हमें अपनी स्मृति में परिवर्तन करना है कि मैं आत्मा हूँ, अशरीरी हूँ, और केवल सुनने बोलने तक ही नहीं, उसके अंदर तक महसूस करने के लिए कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से न्यारी हूँ, अलग हूँ, और मैं अब आत्मा अशरीरीपन का अभ्यास करके सूक्ष्म वतन का परिचय होता है, सूक्ष्म वतन में जा रही हूँ, और मन के संकल्पों पर विजय प्राप्त करनी होती है। तो शुरू में सभी का अनुभव यह है, बाबा को भी यही अनुभव हुआ। पहले बार तो बाबा को शिव बाबा ने सहयोग दिया, जैसे हम सबको बाबा बाप दादा के सहयोग से उड़ जाते थे, ऐसे ही ब्रह्मा बाबा को भी। पहली बार तो ये हुआ जब आप सबने सुना है ना, गुरु की सभा में बैठे थे, अंदर गए और बाबा एकदम बस अशरीरी जैसे हो गए। बाबा की पुत्र वधु, हाँ, ब्रजेंद्रा दादी ने देखा, कमरा भी लाल लाल हो गया और बाबा के जैसे कोई शक्ति प्रवेश कर रही है और बाबा के मुख से कोई दूसरा बोल रहा है, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। तो वो भी शक्ति ब्रह्मा बाबा की, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करके जैसे वो अनुभव कराया, सबको बताया, और ऐसे ही ब्रह्मा बाबा ने फिर औरों को भी, हम बच्चों को भी ये अनुभव कराया। और अब हम बच्चों का काम है कि हम भी इस अभ्यास को पक्का करके, मैं आत्मा हूँ, जिस जिसके भी संबंध संपर्क में आते हैं, बच्चे हो, पड़ोसी हो, संबंधी हो, कोई ऑफिस वाले हो, कोई भी हो, सब आत्मा ही दिखे। और जब ये स्थिति आ जाएगी तो हम जिसको भी दृष्टि देंगे, जिस आत्मा की भी प्रकृति में देखेंगे, वो आत्माएं भी उड़ने का अनुभव करेंगे। जो बाबा ने कहा काला राज का मुरली में भी, कि दूसरों को ये अनुभव हो, हाँ, इन्हें कुछ मिला है, इनके नेत्र साधारण नहीं है, बस इनके कुछ मिला है और ये सबसे अलग है, मुरली में बोला ना बाबा ने। तो ये तब होगा जब पहले अभ्यास अपना किया हुआ होगा मन का। ये बाबा को भी अनुभव हुआ, बाबा ने जब शिव बाबा ने प्रवेश करके, उस वक्त तो बाबा को बहुत अच्छा लगा परिवर्तन, लेकिन जब बाबा अपना अभ्यास करने बैठते थे तो बाबा का मन भी भाग जाता था, कभी धंधे की तरफ, कभी बच्चों की तरफ, कभी बिजनेस की तरफ, कभी कहीं और। तो फिर बाबा ने क्या किया, क्या किया बाबा ने, बाबा ने पत्र लिखा मन को, हे मन, मैं आत्मा राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, तुझे मेरे कहने पर चलना पड़े क्योंकि मैं राजा हूं, लेकिन तू इतना बलशाली हो गया कि तूने मुझ राजा को अपने वश में कर लिया और मैं भी तेरे पीछे पीछे दौड़ता रहा, मैं कमजोर हो गया और मन तू शक्तिशाली हो गया। ऐसी बाबा ने बुद्धि को भी पत्र लिखा, हे बुद्धि, तू भी मन के कहने पर चलती रही और तुम दोनों ने मिलकर के मुझे बहुत शक्तिहीन कर दिया, कमजोर कर दिया। ये बाबा ने पहले पत्र लिखा, लेकिन बाबा का अभ्यास तो चालू ही था, मैं आत्मा हूं। फिर बाबा ने लास्ट पैरा में लिखा कि लेकिन हे मन, हे बुद्धि, अब मैं तुम्हें कह देता हूं कि अब मैं आत्मा राजा अपनी स्वस्थिति में स्थित हो गया हूं, अब तुम्हें मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, मैं तुम्हारे कहने पर नहीं चलूंगा, क्यों, क्योंकि मैं राजा हूं और तुम मेरे कर्मचारी हो। तो बाबा सोमान की सीट पर स्थित हो करके फिर बाबा ने जब मन बुद्धि को ऑर्डर दिया, हमेशा के लिए मन बुद्धि बाबा के कंट्रोल में आ गए। बस यही हमें भी करना है, हम भी चाहते हैं शक्तियां आए, कभी समाने की शक्ति का हम आवाहन करते हैं, कभी सहन शक्ति का, जैसी परिस्थिति होती है, लेकिन फिर भी कई बार नहीं आते हैं, हम रोक नहीं पाते अपने को। तो इस कारण से क्यों, क्योंकि हम सोमान की सीट पर बैठ के ऑर्डर नहीं करते। कोई भी ऑफिसर है, अगर अपनी सीट पर है और कोई ऑर्डर करता है तो सब उसकी बात मानेंगे, उसके अंडर में है सब। लेकिन उस ऑफिसर का ट्रांसफर हो गया या रिटायर हो गया या जॉब छोड़ दिया, चला गया, कोई उसकी बात मानेगा, सीट पर नहीं है तो नहीं मानेगा। ऐसी हमें भी सुमान की सीट पर बैठ करके तब ऑर्डर करना है। एक राजा के दरबार में एक भिक्षुक आया, भिक्षा पात्र लेकर के आया छोटा सा, तो उसने कहा राजन मुझे भिक्षा दो। तो राजा ने कहा ठीक है, मंत्री को बोला जाओ कोष राजकोष से मोहरे निकाल करके इसके इसमें डाल दो। वो गया मंत्री ने कहा मुट्ठी भर के लाया, डाल दिया, भरा नहीं। वो दोबारा गया तीसरी बार, चार बार, दस बार गया, हर बार भर भर के लाता था, डालता था, लेकिन वो भिक्षा पात्र भरता ही नहीं था। देखने में तो छोटा ही था लेकिन भरता नहीं था। तो राजा को भी आश्चर्य हुआ, सभी को आश्चर्य हुआ। तो राजा ने पूछा महाराज इसमें जरूर कुछ ना कुछ रहस्य है, ये भरता क्यों नहीं है? देखने में तो छोटा है लेकिन जितना भी डालो सब इसमें समा जाता है। तो उसने क्या कहा, राजन ये पात्र जो है ये मनुष्य की खोपड़ी का बना है, यहाँ सिर का खोपड़ी का, इस यहाँ मन है और मन कभी भी तृप्त नहीं होता है। जितना मिल जाए, एक इच्छा होगी मन की, वो इच्छा तृप्त हुई दो और इच्छाओं का जन्म हो जाएगा, वो इच्छाएं तृप्त हुई चार और इच्छाओं का जन्म हो जाएगा। तो ये मन का बना हुआ है पात्र, इसीलिए खोपड़ी का बना है, इसलिए ये तृप्त नहीं होते कभी भी। तो इसके लिए क्या करना है कि मन को तृप्त करने की, वश में करने की कला जिसको आती है और जो सीखता है उससे ही ये पात्र भरेगा। तो बस हमें भी सबसे पहले पहले एक ये सीखना है, अगर हम उड़ना चाहते हैं, कौन सी चीज उड़ सकती है, हल्की या भारी? हल्की उड़ सकती है, जो लाइट होगी जितनी उतनी उड़ेगी। ऐसे ही मन को भी ना हमें हल्का बनाना पड़ेगा। सारे दिन भर जितने भी क्रियाकलाप होते हैं 90% या 99% केस में हम मन को भारी बनाते चलते हैं। किन चीजों से मन भारी होता है, जो हमेशा बोलता है, कौन से शब्दों से? मैं और मेरा, बस ये मेरा है, कोई भी चीज है मेरा है रखी, भारी हो गया। तो मैं और मेरा, जब मैं करें तो क्या सोचें, मैं आत्मा हूं, और जब मेरे की बात आए मेरा बाबा, तो फिर कभी भारी नहीं होंगे, हल्के होंगे और हल्के होकर के उड़ते रहे। तो एक तो उड़ने की कला ये है कि मेरे को तेरे में परिवर्तित कर दे, संकल्प में बाबा ये सब तेरा है। विदेशी बड़े एक्सपर्ट होते हैं, हम लोग तो देखते हैं विदेशी जब भी आते हैं ना, उन्होंने ये बहुत पक्का किया। मेरा भी विदेशियों में अनेक बार 25 बार से ज्यादा जाने का सौभाग्य मिला, अलग अलग देशों में, सब कंटिनेंट्स में, और बस आओ चलो बाबा की कार में चलते, चलो बाबा के घर चलते हैं। अपना तो कभी वो कहते ही नहीं किसी भी चीज के, चलो बाबा का ब्रह्मा भोजन करते हैं, घर में ही होगा सब कुछ, लेकिन मैं और मेरा उनके मुंह से कभी नहीं निकलता। ये भी लास्ट तो फास्ट के लक्षण है। तो इसीलिए मेरे को हम तेरा में, जितना संकल्पों में, फिजिकली देना नहीं है कोई बाबा को, संकल्पों में बाबा ये आपका है, उससे क्या है, वो चीज, वो धन तन संबंध, वो गलत काम में यूज नहीं होगा, नेगेटिव में। बाबा का है, बाबा से पूछ कर करेंगे। अब बाबा से पूछने के लिए क्या चाहिए, क्लीन और क्लियर बुद्धि चाहिए। बाबा तो संकल्प दे देते हैं। बाबा ने एक बार कहा था कि हर बच्चे का टीवी मेरे पास है, हर बच्चे का टीवी है, ऑफ रहते हैं। जब भी कोई बच्चे से कोई गलती होती है, कमजोरी होती है, कोई विकारों के वशीभूत होता है, उसका टीवी ऑन हो जाता है, फिर बाबा का ध्यान जाता है। 10 टीवी रखे होंगे, 9 ऑफ होंगे, 1 ऑन होगा, तुरंत उधर ध्यान जाएगा। ऑन होता है तो बाबा को पता चलता है ये बच्चा इस समय किस कमजोरी के वशीभूत है। फिर बाबा क्या करता है, उसको सकाश देता है, शक्ति देता है। और जब शक्ति बाबा तो देता है, लेकिन वो बच्चे की अगर बुद्धि क्लीन नहीं हुई, ट्रांसमीटर तो पावरफुल है लेकिन रिसीवर अगर पावरफुल नहीं है तो रिसीव ही नहीं करेगा, तो एक्ट कैसे करेगा। तो इसीलिए बाबा कहता है अपनी बुद्धि को, मन बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखो, उसको कुछ थोड़ा खाली समय दो। सारा दिन भर हम कुछ ना कुछ सोचते हैं, बोलते हैं, करते रहते हैं, खाली समय देना अपने लिए वो बहुत जरूरी है। इसीलिए बाबा कहता है वो समय सबसे अच्छा है अमृत वेले का, क्योंकि उस वक्त दिन के बाद तो फिर अपने अपने धंधों में बिजी हो जाते हैं, कामों में। तो इसीलिए सुबह जो है कुछ समय बस मैं और मेरा बाबा उसमें देते रहो। तो जितना ये समय देंगे उतना जो है बाबा जो भी जिस समय टच कराना चाहेगा तुरंत हम रिसीव कर सकेंगे। और उसके बाद ये नहीं सोचना पड़ेगा मैं ये करूं या ये करूं, ऐसे करूं या ऐसे करूं, करूं या ना करूं, नहीं, ये सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ऑटोमेटिकली हमारे पैर उधर बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी। तो जितना भी बाबा ने कई बार बोला है मैं बच्चों की रक्षा के लिए बंधा हुआ हूं, कब, बस मैं जब बाबा जो बच्चों को बात कहे बच्चे उस बात को रिसीव करके और तुरंत उसे इम्प्लीमेंट कर दे। बाबा ने कहा भी है, शब्द भी दिए हैं, आओ कोई भी प्रॉब्लम आती है बाबा का आवाहन करें। बाबा ने कई बार कहा है मैं बच्चों को कहता हूं मुझे यूज करो, लेकिन बच्चे यूज ही नहीं करते मुझे। मेरे बाबा, मेरे साथी, आओ आओ बाबा रक्षा करो, आओ बाबा मैं इस परिस्थिति में क्या करूं, बाबा आओ। और देखो बाबा किसी व्यक्ति के द्वारा, कोई टचिंग के द्वारा, कोई साधन के द्वारा आपको उस जितनी भी भयानक परिस्थिति होगी उससे निकाल लेगा। हमारा तो जीवन में 50 बार का अनुभव है ये। बस बाबा को दिल से, बाबा आओ आओ बाबा मेरे साथी, आओ बाबा इसमें आप रक्षा करो, मदद करो। और बाबा बस तुरंत ही कोई व्यक्ति वस्तु को साधन बना करके उस परिस्थिति से पार करा देता है। बहुत बहुत भयंकर परिस्थितियां आई है लेकिन बाबा ने निकाल लिया। तो एक ये बात है कि उड़ने के लिए हल्के रहना बहुत जरूरी है। और हल्का कैसे रहेंगे, हा? जब बाहर होते हैं ना, जिस समय बाहर एक शिल्पकार था, हा? बहुत अच्छे पत्थर की मूर्तियां बनाता था शिल्प वो। तो जब बनाता था तो लोग कहते थे आप इतनी बढ़िया मूर्तियां कैसे बना लेते हो। तो कि नहीं, मैं तो मूर्ति बनाता नहीं हूं, जैसे ये पत्थर है मैं पत्थर को लेता हूँ और इसके चारों तरफ जो भी वेस्ट है उस वेस्ट को मैं निकाल देता हूँ तो मूर्ति अपने अंदर से आप ही प्रत्यक्ष हो जाती है। बात वही है, लेकिन वेस्ट को निकाल देना और मूर्ति को का प्रत्यक्ष होना, बस यही बात है। हम सब के अंदर भी हमारी संपूर्ण मूर्ति छिपी हुई है, संपूर्णता। बस जो भी व्यर्थ का हमारा तन मन धन समय शक्ति जाती है बस उसको हमें निकालते रहना है, निकालते रहना है। व्यर्थ जब आता है अकेले ही नहीं आता है, कर्म में तो बहुत बहुत लेट स्टेज में आता है। पहली बार एक संकल्प व्यर्थ का आएगा, कोई कमजोरी का संकल्प, लेकिन चूंकि पुराना संस्कार है, इस जन्म का हो या पिछले जन्म का हो कोई हो, वो आता है तो चूंकि अंदर भी कमजोरी या आत्मा में भरी हुई है, तो जैसे गुदगुदाहट होती है, जैसे वो झंझनाहट, वो संस्कार, उसको हम वेलकम करते हैं। और जैसे ही वो संस्कार आया, वो संकल्प आया कमजोरी का, उसको हमने आने दिया, वो अपने दूसरे साथी को बुला लेता है, दूसरा संकल्प आता है उसे वेलकम करते हैं, तीसरा आता है। इस तरह कमजोर संकल्पों की एक श्रृंखला पैदा हो जाती है चारों तरफ, और फिर वो कमजोर संकल्प जब व्यवहार में आते हैं, बोल में आते हैं, किसी उसमें जब संस्कार बनने लगता है, तब हम परेशान होने लगते हैं। अरे ये तो हमारी मर्यादा के विपरीत है, ये तो बाबा ने कहा ही नहीं है, ऐसा तो सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन इसीलिए बाबा कहते हैं, पहला ही संकल्प जब आए उसे दूर से भगा दो, आने ही ना दे। एक व्यक्ति बड़ा अशांत सा हो रहा था, कमजोर संकल्प आ रहे थे, वो अपने गुरुजी के पास गया। गुरुजी के पास भी 5-6 चेले बैठे हुए थे, वो भी बैठ गया, और बैठ के बस सुनने लगा, बड़ी शांति सी मिलने लगी उसे, अच्छा लगने लगा। इतनी देर में क्या हुआ, भूकंप आया, अर्थक्वेक, भूचाल आया, बड़ी तेजी से भूचाल आया, सब तरफ हिलने लगे, गुरुजी का वो छपरा भी हिलने लगा, और वो जब हिलने लगा सब चेले भागे बाहर, भागो भागो भागो, चारों तरफ आवाज आने लगी, और बिल्डिंगों से निकल कर भी लोग खुले में भागने लगे, और गुरुजी वहीं के वहीं बैठे रहे। बहुत लोगों ने कहा, चेलों ने, गुरुजी आओ आओ बाहर आओ, ये अगर गिर गया तो आपको चोट लगेगी, बाहर गुरुजी शांति से बैठे रहे। बैठे थोड़ी देर के बाद जब भूचाल शांत हुआ तो सब चेले वापस लौट के आए, और लौट के आए के उन्होंने कहा, गुरुजी हमने आपको इतनी बार बुलाया, आप आए नहीं, अगर ये गिर जाता तो आपको तो बहुत चोट लग जाती। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, तुमने देखा नहीं, तुम भी भागे, मैं भी भागा तो था तुम्हारे साथ। कहाँ गुरुजी, आप तो वहीं बैठे रहे। कि हाँ, फर्क था ना, क्या था, तुम बाहर भागे, मैं अंदर भागा। बाहर अति हलचल, अंदर अति अचल। तो यही परिस्थिति पेपर में, लास्ट पेपर यही है। बाबा ने कहा बाहर अति हलचल होगी, एक तरफ युद्ध की हलचल, एक तरफ 5 तत्वों की हलचल, जल की हलचल, पृथ्वी की हलचल, बहुत ग्रह युद्ध की हलचल, खूने नाक खेल, चारों तरफ हाहाकार होगा। लेकिन अंदर भागने का जिसे अभ्यास होगा, वो अंदर भागेगा और अंदर अति अचल स्थिति में स्थित हो जाएगा, क्योंकि अंदर अति अचल है। बाहर जितनी भी हलचल हो, लेकिन अगर हमें अंदर भागने का अभ्यास हुआ, तो ये अभ्यास खाली बैठ बैठ के बीच में हम सबको जरूर करना चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितनी जितनी प्रैक्टिस होगी, उतना उतना वो अभ्यास हमारा पक्का होता जाएगा। और जब वो अभ्यास पक्का होगा, तो अभ्यास पक्का होने के साथ साथ क्या होगा, हमारा अभ्यास भी पक्का होगा और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता जाएगा, हाँ मैं कर सकता हूँ। जो पहली बार भाई लोग हैं, साइकिल चलाई होगी, बैलेंस तो नहीं हुआ होगा एक बार में ही, कई बार गिरे होंगे। माताओं ने जब पहली बार रोटी बनाई होगी तो गोल गोल बन गई क्या, नहीं, बहुत कई शेप बनी होंगी, चिपक गई होगी चकले पर कई, लेकिन बाद में कितनी प्रैक्टिस हो गई, अब बात भी करते रहो, स्कूटर चलाते रहो, साइकिल बात करते रहो, कुछ भी, वो अपने आप चलता रहता है। बस बाबा यही अभ्यास चाहता है। और ब्रह्मा बाबा को हमने देखा, यही अभ्यास इतना पक्का हो गया था बाबा का कि बस इस अभ्यास में बाबा एकदम बिल्कुल जैसे गुम हो जाता था। बाबा के सामने गए, बाबा से ये बात करनी है, और मुझे वैसे तो बाबा से कई बार मिले, लेकिन एक सौभाग्य बहुत प्राप्त हुआ हमें। वो सौभाग्य ये था कि अंतिम समय 17-18 जनवरी को हम इंजीनियरिंग पास करने के बाद एमटेक पास ONGC ज्वाइन किया, 1967 में पास किया, तो बाबा के कहने पर ही ONGC, तब जो ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न में एक भी सेंटर नहीं था, पूरा आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये जितने भी हैं सातों स्टेट, एक भी न गीता पाठशाला थी न सेंटर था। लेकिन बाबा तो भाई भगवान जान ही जाना नार, नहीं बच्चे तुम्हें वहां जाना है और बस जब तुम्हारा काम हो जाएगा बाबा बुला लेगा। तो बस वहां गए 67 में, बीच में 69 में बस हमें देहरादून से गए थे, वहां बहन जी का निमंत्रण आया कि म्यूजियम बनाना चाहते हैं, आपका थोड़ा मदद की जरूरत है, डायरेक्शन आप आओ। तो बाबा से पूछा, पहले ये इंटरनेट और ईमेल तो होते नहीं थे, तो बाबा से पूछा, बाबा ने कहा हाँ हाँ बच्चे जाओ, लेकिन पहले मधुबन आओ और तुरंत आओ, प्लेन से आओ। तो बाबा ने बुलाया, जनवरी 69 की बात है, और हम आसाम से आए, लौकिक पिताजी को भी बता दिया और वो भी आए, और फिर हम लोग दोनों 17 जनवरी की सुबह यहाँ पहुँच गए 1969। और 17 और 18 जनवरी को बाबा के सम्मुख ही थे यहाँ पर, जब बाबा की कर्मातीत अवस्था देखने का मौका मिला। तो उसमें हमने क्या देखा, हमेशा तो जब भी बाबा से मिलते थे बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा पूछते थे हाँ बच्चे क्या पूछने आए हो, बताते थे, बाबा उसका उत्तर देते थे, समाधान करते थे। लेकिन बाबा की जब कर्मातीत अवस्था 17-18 जनवरी को देखने को मिली, तो बस बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा दृष्टि देते थे, और बाबा कहते बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाए। बाबा प्रश्न भी बता देते थे और उसका समाधान भी दे देते। ये कर्मातीत अवस्था का लक्षण है, जब अपने संकल्पों का भी बोझा नहीं होगा, अपना एक भी व्यर्थ संकल्प नहीं होगा, तो हम दूसरे के संकल्प को भी इमीडिएटली रीड कर सकते हैं और उसका समाधान कर सकते हैं। क्यों? बिल्कुल हल्के होंगे, उड़ते होंगे, दूसरे के संकल्प को एक्यूरेट कैच कर सकेंगे। अगर हमारे ही कुछ व्यर्थ संकल्प चल रहे होंगे, उसमें मिक्स हो जाएंगे, तो हम दूसरे के संकल्प को पढ़ ही नहीं सकते। तो इसलिए उड़ने और उड़ाने के लिए ये एक आवश्यक है कि हमारे संकल्प भी जो है ना, कोई भी उसमें व्यर्थ ना हो, एक भी। और वो व्यर्थ संकल्प को कैसे पहचान सकते हैं हम, कैसे पहचानेंगे कि ये व्यर्थ संकल्प? व्यर्थ संकल्प, चलो बाबा को याद, ट्रैफिक कंट्रोल किसी का बज रहा है या यहाँ? तो ये संकल्प पहचानने के लिए ना, एक तो संकल्पों की क्वांटिटी, तीन चीजों से पहचान सकते हैं। एक संकल्पों की क्वांटिटी यानी संकल्पों की संख्या, दूसरी है संकल्पों की क्वालिटी, कैसी क्वालिटी है, गुणवत्ता, और तीसरी है डायरेक्शन ऑफ संकल्प, संकल्प किस दिशा में जा रहे हैं, क्वांटिटी क्वालिटी एंड डायरेक्शन। जब संकल्पों की क्वालिटी बहुत बढ़ जाए एकदम, अभी आप यहाँ बैठे हो, ठीक है, सुन रहे हैं, लेक्चर है, एंजॉय कर रहे हैं, सडनली आपके पास मैसेज आए, आपका फलाना नियर एंड डियर संबंधी एकदम बहुत क्लोज, उसका एक्सीडेंट हो गया, बहुत सीरियस कंडीशन में है, आईसीयू में है, फलाने हॉस्पिटल में है, बस संकल्पों की गति आपकी तेज हो जाएगी। संकल्प क्वांटिटी बहुत बड़ी, क्या होगा, कैसे होगा, अभी तो उसकी फैमिली कच्ची है, छोटी है, आदि आदि बहुत। और क्वालिटी ऑफ संकल्प भी निगेटिविटी की तरफ ज्यादा जाएंगे, पॉजिटिविटी की तरफ कम होंगे, निगेटिविटी की तरफ जाएंगे, तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्वालिटी कम हो जाएगी। और डायरेक्शन ऑफ थॉट भी आपके चारों तरफ एकदम, और जितनी ज्यादा संख्या होगी उतने संकल्प वेस्ट ज्यादा होंगे। तो अब प्रश्न ये उठता है कि सदा हल्के कैसे रहे, हल्के रहेंगे तो उड़ते रहेंगे। तो हमारी भारतीय संस्कृति ने कुछ सिद्धांत दिए हैं, अब बाबा ने भी उन्हें बहुत सहज करके बताया है। एक सिद्धांत ये है, हाँ, वसुधैव कुटुंबकम, ये पुराना सिद्धांत है, हम सब सुनते आ रहे हैं, वसुधा ही हमारा कुटुंब है। उसको हमने ये समझ लिया भाई मनुष्य मात्र जितने हैं वो परिवार, हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, नहीं इतना ही नहीं, वसुधा के अंदर, पृथ्वी के अंदर क्या है, मनुष्य भी हैं, पशु पक्षी भी हैं, जीव जंतु भी हैं, पांच तत्व भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, तो ये सारा हमारा परिवार है। तो इसीलिए परिवार को हमें ये केवल समझना नहीं है वसुधा को, बल्कि इसको व्यवहार में भी लाना है। फॉर एग्जाम्पल, छोटा बच्चा होता है ना, तो जब छोटा बच्चा होता है बिल्कुल बस माँ की छाती से लगा रहता है, कुछ दिन का कुछ महीने का होता है, बड़ा होता जाता है, बस माँ ही उसका संसार है। ऐसे ही ये जो पेड़ पौधे हैं, ये धरती माता के साथ जीवन पर्यंत लगे रहते हैं, ये हमारे परिवार के सबसे छोटे मेंबर हैं। यंगेस्ट मेंबर ऑफ अवर फैमिली परिवार के सदस्य हैं, तो उनको पौधा ही नहीं समझो। विज्ञान ने भी काफी हद तक सिद्ध कर दिया है कि इनमें भी चेतना है, और ये चेतना इनको प्यार से लविंगली ट्रीट करते हैं, इनकी ग्रोथ ज्यादा अच्छी होती है, और दुश्मनी के भाव से इन्हें थोड़ा तोड़े मड़ोड़े, ये इनकी ग्रोथ बहुत कम हो जाती है। तो सबसे छोटे सदस्य ये, फिर बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है मनुष्य का, तो थोड़ा घिसट के चलने लगता है, तो ऐसे कई सांप हैं, केंचुए हैं, कई हैं जानवर पूरे शरीर के साथ घिसट करके चलते हैं, वो सेकंड यंगेस्ट मेंबर है। फिर थर्ड, और थोड़ा बच्चा बड़ा होता है, दो हाथ दो पैर से चलता है, तो जितने चौपाए हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी वगैरह, जितने चार पांव वाले, ये सब हमारे परिवार के तीसरे सबसे छोटे सदस्य हैं। और सबसे बड़े सदस्य मनुष्य है, तो मनुष्य का कार्य है इन सब को परिवार की तरह रखना, क्योंकि ये सब चेतन है। जो अहिंसा परमो धर्म हम बोलते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, इनसे भी हिंसा होती है। और ब्रह्मा बाबा को हम देखते थे, ब्रह्मा बाबा ना गुरुवार के दिन भोग लगता था ना, जैसे तो सुना होगा एक बाबा की हिस्ट्री हॉल में ना, बाबा की असेंबली एक मम्मा की बीच में खाली रहती थी, गुरुवार के दिन संदेशी भोग लगाती थी, फिर भोग लगा के संदेश सुनाती थी, फिर बाबा हाँ भोग की थाली ली, थाली की डिब्बी खोली और हाथ में थोड़ा भोग रखा, जो भी बना होता था, हलुआ है, बूंदी है, कुछ भी है, और बस ऐसे करके बाबा कहते थे, आओ बच्ची, आओ आओ बच्ची। तो हम सब लोग देखते थे बाबा किसे बुला रहे हैं, किस बच्ची को, आओ बच्ची। तो बस पीछे से हिस्ट्री हॉल के पीछे के दरवाजे से एक छोटी सी चिड़िया बुलबुल सी बस चू 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 करती हुई फदकती हुई आती थी, और बस आके बाबा की पहले टेबल के पास आई, फिर टेबल पर उछल के चढ़ी, फिर थाली पर आई, थाली पर बैठ के बाबा के हाथ पर बैठती थी, और बस बाबा के हाथ से बड़े प्यार से वो थोड़ा सा जो भी भोग बना था खाती थी, और बस चू 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 ऐसा कुछ करके जैसे थैंक्स दे रही हो बाबा को, ऐसे करके अपना वो धीरे से उतर के चली जाती थी। तो बाबा कहते थे देखो बच्ची, ये सब अभी सतयुग में तुम्हारे लिए बहुत बहुत मनोरंजन का साधन बनेंगे, और ये ऐसे तो ये कोई चिड़िया की बात नहीं, चिड़िया तो चलो ऐसी है हानि रहित चीज, लेकिन एक बार बाबा हिस्ट्री हॉल की तरफ से उधर से आ रहे थे किचन की तरफ से, तो जहाँ भी हमारी डिस्पेंसरी है वहाँ सब भाई लोग खड़े थे, तो बहुत भीड़ लगा रही थी। तो बाबा ने कहा अरे बच्चे क्यों भीड़ लगा रखी है? तो बाबा बाबा आप यहाँ नहीं आओ, यहाँ एक सांप है बहुत बड़ा। तो एक सांप था और एक भाई ने डंडे से उसके फन के ऊपर ऐसा डंडा दबा के रखा हुआ था, तो बहुत तेजी से वो फड़क रहा था और बहुत ऐसा लग रहा था फुफकार रहा था, कोशिश कर रहा था एकदम निकलने की। तो बाबा नहीं आओ, नहीं नहीं बच्चे, बच्चे को मारना नहीं, बच्चे को मारो नहीं। और बस बाबा पास आए, बहुत तेजी से पूंछ हिल रही थी और पूरा शरीर उसका सांप का। तो बस बाबा आए, सामने खड़े हो गए उसे। अब बाबा ने कहा कि जाओ बच्चे, थोड़ी देर तक बाबा उसे देखते रहे, दृष्टि जैसे दे रहे हो, वो धीरे धीरे बिल्कुल शांत हो गया। एक भाई को बाबा ने बोला जाओ बच्चे अंदर से मटका ले आओ, छोटा सा वो मटका लाया। बाबा ने कहा इसको पूंछ से पकड़ के इसमें डाल दो और कपड़े से बांध के जंगल में छोड़ाओ। तो बाबा का हर एक के लिए, चाहे कोई कैसा भी पशु, वसुधैव कुटुम्बकम का एक्चुअल बाबा की भावना थी, पूरा वसुधा हमारी परिवार है। तो ऐसा हम लोग भी सोचते हैं कि कोई भाई बहन की बात नहीं, भाई बहन तो है ही है, लेकिन कोई भी हो उनके प्रति हमारी सर्व के प्रति बहुत कल्याण की ऐसी भावना हो, वो प्रैक्टिकल में देखने को मिलती थी। और एक ये देखने को मिलता था, दूसरा एक सिद्धांत दिया है जियो और जीने दो। हमारा फर्ज है बड़े होने के नाते, मानो परिवार में बड़े हैं, छोटे को हम उसकी शिक्षा दें, थोड़ा उसको राइट पाथ जीवन जीने की सही रास्ता बताएं, वो करें, लेकिन ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो पूरा हमारे कहने पर चलेगा। और जब नहीं चलता है तो हमें क्रोध आता है, गुस्सा आता है, मनमुटाव हो जाता है, परिवार में कलह कलेश हो जाते हैं, विघटन हो जाता है, परिवार में बढ़ जाता है। तो जियो और जीने दो, ये संभ्रांत परिवार का नियम है। बाकी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बड़े को ही जीने का अधिकार है, ये तो एक पाश्चात्य संस्कृति वेस्टर्न फिलॉसफी है। जंगल का नियम है, जंगल में बड़ा जानवर छोटे जानवर को खा लेगा, छोटा जानवर उससे छोटे को खा लेगा, और बड़ा ही जानवर शेर ही जैसे जंगल का राजा है। नहीं, हर एक को हमें जियो और जीने दो के सिद्धांत पर चलने का अधिकार देना चाहिए। इन सब से क्या रहेगा? प्रेम। एक तीसरा है मन जीते जगत जीत, भारतीय संस्कृति ने कहा है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो इसीलिए ये हमें मन, एक्सटर्नल अपीयरेंस अपना काम करती है, लेकिन मन का सशक्तिकरण वो ज्यादा जरूरी है। इसीलिए ये सिद्धांत जितना जीवन में आएंगे उतना हम हल्के होते जाएंगे जीवन में। क्यों? क्योंकि इनके पीछे बेसिक नियम है प्रेम, स्नेह। हर एक के प्रति जब हमारा स्नेह होगा, प्रेम होगा, प्यार होगा, हर आत्मा के प्रति, हर मनुष्य, कहीं भी कहा सुनी नहीं होगी, झगड़ा नहीं होगा, प्रेम के साथ जीवन में है। हमेशा एक वो नियम जैसा बन गया है, हम दूसरे को ब्लेम करते हैं कोई भी बात होती है। हा? आपने देखा होगा, छोटा बच्चा होता है ना, एक दो महीने का है, और बड़ा हुआ थोड़ा खड़ा होना सीखता है, और बड़ा हुआ थोड़ा चलना सीखा। हाँ, चलता है, एक दो कदम चलता है, फिर गिर जाता है, फिर खड़ा हो जाता है। माँ बाप भी हिम्मत बंधाते हैं, हाँ बहुत अच्छा। कई बार क्या होता है, तेजी से चलता है, चलते चलते गिर जाता है, या दीवार से या दरवाजे से टक्कर लगी, थोड़ा चोट लगी, रोने लगता है। माँ क्या करती है, देखो धरती को मार दे, ऐसा करके बच्चा भी देखता है जरा गौर से, माँ का ये है कि तेरा दोष नहीं है, ये धरती का दोष है कि तुझे चोट लगी। और वो, और बच्चे के माइंड में भी पहले दिन से ये बैठ जाता है कि बस मैं गलत नहीं हूँ, मैं हमेशा सही हूँ, दूसरा ही गलत है। और वो जीवन भर हमारे साथ चलता रहता है, कोई भी बात होती है हम दूसरे को ही दोष देते हैं, दूसरे की तरफ एक उंगली होती है, तीन उंगली हमारी तरफ, इसे भूल जाते हैं। लेकिन ये तो वास्तव में ये सिद्धांत से ना बात क्या है, भाव कि जहां पर भी प्रेम का अभाव होता है ना, वहीं पर ही सारी समस्याओं का जन्म होता है। और वहीं पर ही, अब हमारा परिवार ये छोटा सा परिवार है, बाबा का परिवार, बाहर की दुनिया वाला कोई क्रोध करेगा हमें महसूसता नहीं होगी, चलो अज्ञानी है क्रोध कर रहा है। लेकिन अपना भाई बहन अगर कोई क्रोध करता है, बोलना बोलचाल हमारी बंद हो जाती है, किन्हीं से मन फर्क हो जाता है, मन भेद मतभेद हो जाता है, वो उधर से आता है तो उधर से निकल जाता है, हम इधर से सामने सामने भी जा रहे हैं, हम इधर से निकल जाते हैं, बोलचाल नहीं रहती और समस्या बढ़ती रहती है। तो बाबा ने क्या कहा है, दादियां एक बात मुझे याद है, बड़ी दादी एक बात बोलती थी हमेशा, देखो संबंधों में कटुता आने के दो कारण है मुख्य, कौन से, एक है मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी, भाई पता है तुम्हें फलाना भाई फलानी बहन को ये बात तुम्हारे लिए बोल रहा था, तुम्हारे अंदर ये बात है, बस इधर उधर से घूम के बात हमारे कान में आई और हमारा संबंध उस भाई से या उस बहन से बिगड़ जाता है, कटुता आ जाती है। और जब संबंध बिगड़ जाते हैं बोलचाल, दूसरा प्रॉब्लम होती है कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, बोलचाल बंद हो जाता। हम कहते हैं पहले वो बोले, वो कहते हैं पहले ये बोले, और बोलचाल में बंद हो जाती है और संबंधों में और कटुता बढ़ती रहती है। अब इस संबंध के साथ तो हम सतयुग में जा नहीं सकते, सतयुग में तो ऐसा किसी के बीच में भी नहीं होगा। तो यहां पर कभी भी किसी के साथ भी संबंध जब भारी होते हैं, कटुता आती है, तब व्यक्ति भारी होता है, तब वो ना उड़ सकता है ना उड़ा सकता है। संबंधों में जब हल्कापन रहता है, अपनापन रहता है, तो हम उनके साथ बड़े प्रेम से बर्ताव होता है और संबंध आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इसीलिए कभी भी किसी के साथ थोड़ी भी वो बात हो तो बुला करके, आइए बहन जी, आओ भाई जी, भाई मेरे मन में अभी ये चल रहा, आपके लिए ये बात, मुझे ये पता चला है आप ऐसा सोच रहे हैं, कोई भी बात हो, अक्सर करके 90% जो होती है वो मिसअंडरस्टैंडिंग ही होती है, वास्तविकता नहीं होती उसमें, हमारी कल्पना ही होती है, और उस कारण से ही संबंधों में कटुता आती है और कटुता आने के कारण संबंधों में टकराव पैदा हो जाते हैं, तो भारीपन आता है जीवन में और भी ज्यादा। इसीलिए भारीपन से बचने के लिए ये एक देखना है कि संबंधों में कभी भी कटुता ना आए, और जब संबंधों में कटुता आती है तो और भारीपन होता है, और भारीपन के साथ साथ फिर संबंध विच्छेद भी होने लगते हैं। इसीलिए जिन भी आत्माओं के साथ हमारे ये परिवार है ना, देखना है किसी भी आत्मा के साथ हमारे संबंधों में कटुता कभी ना हो, न संबंध में भारीपन, तो ये हल्कापन लाएगा और हल्कापन हमें सदा उड़ाता रहेगा, हम भी खुद भी उड़ेंगे और दूसरे को भी उड़ाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।
बाबा।